परम जंजाल, ये अति बखेड़ा नाद ध्यान हरे सब। मनुष्य यदि अपने बारे में विचार करे, जब से उसने अपना होश संभाला है आज तक कर्म के जंजाल में ही वो फंसा है। कर्म को जंजाल क्यों कह रहे हैं और इसको बखेड़ा क्यों कह रहे हैं कि कर्म और उसका जो फल है दोनों ही बंद रूप, मिलना बिछेड़ना, सुख मिलना दुख मिलना, बनना बिगड़ना, हर कर्म में है ये द्वंद होता है। हम एक निश्चित परिणाम चाहते हैं, निश्चित रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन हमको पता है मैं ठीक प्रकार से घर से निकला, मार्केट से कुछ खरीदारी करनी है, मुझको ये पता नहीं कि रास्ते में क्या हो। कर्म की चिंता, उसके परिणाम की चिंता, भविष्य की चिंता, मनुष्य को एक दुविधा में फंसाए रखती है, एक अनिश्चय की हालत में फंसा कर रखती है। इसीलिए कोई भी मनुष्य अंदर से वो कर्म से बचना चाहता है, कहता है कोई जिम्मेदारी ले ले और मैं चैन से जी सकूं। लेकिन मुसीबत यह है कि शारीरिक जन्म जो है और उसके जो कर्म हैं ये प्रारब्ध के अधीन, इसमें मेरा वश चलता ही नहीं। जो प्रभु ने इस देह के द्वारा कर्म करवाए हैं वो सारे कर्म इसके देह के द्वारा होंगे। महर्षि कहते हैं कि तुम चाहो या ना चाहो उससे कोई अंतर नहीं। एक सत्पुरुष है, मान लिया महर्षि रमण है, महाराज जी है, ये तो सत्पुरुष है, शरीर से तो वास्तव में उनका वास्तव कोई होता ही नहीं, तो हमेशा ही अपने आत्मा में मस्त रहते हैं। लेकिन यदि उनकी शारीरिक क्रिया को देखें तो उनकी क्रिया भी ठीक उसी प्रकार से सुख दुख देने वाली होती है जैसे कि हमारी क्रिया सुख दुख देने वाली होती है। इसीलिए कर्म और कर्म फल ये इसको जंजाल कहा गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य के मन को हमेशा ये चंचल लगता है, बेचैन लगता है। कोई भी संसार में जो भी मनुष्य आया है वो चैन से संसार में जी ही नहीं सकता, ये सब पुरुषों का फाइनल निर्णय है। कह रहे कि नाद ध्यान हरे सब होते, इसका यदि कोई इलाज है तो संसार में है ही नहीं। इसका इलाज मेरी इस देह के अंदर ही मौजूद है। मन की चंचलता यही कहिए कर्म वासना, ये मेरे लिए झंझट है। लेकिन जो शांति का सागर है जिसको ये नाद ध्यान कह रहे हैं, ये सारी पीड़ा मेरी हर लेता है यदि मैं इसको जानने के लिए पुरुषार्थ करूं और मानव जीवन जो मिला है मुझको इसको जानने के लिए मिला है ये मैं सीख लूं। लेकिन आप कहेंगे कि मेरे कर्मों का क्या होगा? कर्मों का कुछ नहीं, ना बनना है ना बिगड़ना, क्योंकि वो प्रारब्ध के अधीन है। ये कर्म करने भी पड़ेंगे, उसका परिणाम भी तेरे सामने आएगा और कुछ इच्छाएं तेरी पूरी हो जाएंगी, कुछ इच्छाएं तेरी रह जाएंगी, अर्थात कुछ कर्म का फल मन के अनुकूल होगा, कुछ प्रतिकूल होगा। ये प्रक्रिया हर जन्म में इसी प्रकार चलती रहेगी। इसीलिए प्रभु ने तेरी सारी जिम्मेदारी खुद ले रखी है। प्रारब्ध को मैं तो जानते ही नहीं, अगला जन्म मेरा कहाँ होगा, किन परिस्थिति में होगा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। वर्तमान जन्म भी मेरा किन परिस्थिति में हुआ, कहाँ हुआ, ये मेरे हाथ में था। तो सत्य ये है, जिस नाद ध्यान की बात ये कह रहे हैं प्रभु, वो इसीलिए कह रहे हैं कि तू संसार में ये काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे गहरा ईश्वर विश्वास है। उनका जो विज्ञान है, लिखित विज्ञान है, वाणी के रूप में आया है, शास्त्रों के रूप में आया है, उसमें मेरा निश्चय पक्का होना चाहिए, बात झांक ये निश्चय पक्का मेरा होता ही नहीं जब तक कि मैं इस पर गहराई से मनन करने को, चिंतन करने को तैयार नहीं हूं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मन अंतर मन आन समया सतस्वरूप नाद प्रभु ध्याय। सत्स्वरूप का ध्यान करने से, उसका सिमरन करने से होता क्या है? मन अंतर मन आन समय। ये मन अंतर मन कैसे आ गया? क्या दो मन है मेरे? एक मेरा मन है और एक मेरे मन का मनन है। तो मैं जो कुछ भी मनन करता हूं या मन के अंदर होता है वो मुझको पता है वासना से प्रेरित होता है। हर मनन का कुछ ना कुछ कर्म से संबंध होता है, फल से संबंध होता है। इसलिए उनकी याद मन में है, भोगों की याद, काम बनने की याद, काम बिगड़ने की याद, भविष्य की प्लानिंग की याद मन में चलती ही रहती है नॉन स्टॉप। लेकिन सत्स्वरूप का जो ध्यान करता है या उसके अंदर जो भक्ति करता है, कहते हैं मन अंतर मन आन समय। तो ये जो मनन प्रक्रिया है ये मन में ठहर जाती है, शांत हो जाती है। क्यों शांत हो जाती है? क्योंकि मन को इतना रस आने लगता है प्रभु के ध्यान में, प्रभु के नाम में, कि मन संसार को याद करना चाहता ही नहीं। इसीलिए मनुष्य की समाधि लग जाती है, घंटों बीत जाते हैं उसके मन में एक संकल्प भी उठता ही नहीं संसार। इसीलिए वो तो रस है, जो आनंद है इस मन को मिलता है उस ईश्वर के ध्यान में, उस देह के अंदर ही, उसके आधार पर ये संसार के चिंतन को छोड़ देता है, अर्थात इसका छूट जाता है। क्योंकि संसार में दुगना ही दुगना है, बेचैनी ही बेचैनी। अब इसको पता लगा है कई जन्म के बाद कि अंदर प्रभु खुद मौजूद हैं और उनके अंदर इतना रस है, इतना आनंद है, इतनी एकाग्रता है कि संसार के किसी संकल्प की जरूरत ही नहीं है। यदि उठता भी है तो वो बेचैनी उसको देता है, उनको चैन चाहिए या बेचैनी चाहिए। इसलिए अपना इसका अनुभव ही बताता है कि वास्तव में मनुष्य इस मन को जितना चंचल करता है, जितने संसार में लंबे चौड़े प्रवाह बनाता है, जितनी आशाएं करता है, ये सारी वो अपनी विपत्तियां खुद खरीद कर लाता है। चाहिए इसको चैन, लेकिन प्रोग्राम बना रहा है बेचैन, बड़े बड़े लक्ष्य बुलंद हो गए। माजी कहते प्रेमी तू प्रोग्राम तो बनाएगा लेकिन गुजरान वाला प्रोग्राम बना, क्योंकि प्रोग्राम तो तूने ही बनाना है, होगा क्या 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 नहीं होगा ये प्रारंभ से। लेकिन तेरी जो चिंता सबसे बढ़ती है, तेरे प्रोग्राम बनाने के कारण बढ़ जाती है, उसको ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है। जितना मैं कर लूंगा उतना मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, मुझे केवल अपने ऊपर विश्वास है, ईश्वर के विधान पर तेरा विश्वास नहीं। जिस मनुष्य ने विधि के विधान पर विश्वास नहीं किया उसकी मानसिक बेचैनी निरंतर बढ़ती रहती है और जीवन ऐसे ही होता रहता है, वो एक एक साल करते और अंत में इसी बेचैनी को लेकर संसार से विदा हो जाता। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सतपुरुषार्थ मन में पायो अगम पुरख से प्रीत करना। वो संसार में पुरुषार्थ की बात नहीं कर रहा है, सतपुरुषार्थ मन में पायो और अगम पुरख से प्रीत करना। वो पुरुषार्थ इस मन के अंदर ही होता है, अर्थात देह के अंदर ही होता है, उसका संसार से कोई संबंध नहीं। वो पुरुषार्थ कहां जाता है? अगम पुरख से प्रीत करना, अंतर्यामी जो ईश्वर है उससे प्रीति बढ़ाने के लिए, उसके अधिक निकट आने के लिए ये मेरा आंतरिक पुरुषार्थ होता है। इसमें कोई मेटीरियल नहीं चाहिए। प्रभु की याद करने के लिए आपको कौन सा मेटीरियल चाहिए? इस काम को करने के लिए आपको संसार की जरूरत नहीं, ईश्वर विश्वास की जरूरत है, सत्पुरुषों पर विश्वास की जरूरत है, इस वाणी पर विश्वास की जरूरत है कि जो आनंद है, जो जीवन का संतोष है, जो जीवन की सफलता है, वो अंतर्यामी प्रभु के अनुभव में है। और इस काम को मैं एक्स्ट्राज में डाल देता हूं, वक्त मिलेगा तो याद भी कर लूंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि का निश्चय एक ही बात पर खड़ा हुआ है कि जितनी जिम्मेदारी मैं उठा लूंगा उतना ही जीवन में सफल करूंगा। और मैं संतुष्ट हो गया। उसे ये ध्यान ही नहीं आता कि मेरे जीवन की लीला तो जन्म लेते ही प्रभु ने फिक्स कर रखी है। इस बात को ये देखना चाहते हैं आप तो सत्पुरुष के जीवन को देखना होगा। हमको रोटी की कितनी चिंता होती है, लेकिन आपने पढ़ा भी है, कई बार सुना भी है कि महाराज जी की माँ जब वो जंगल को जा रहे हैं रात्रि को वही रहते थे समाधि में, तो माँ कह रही है मंगत कल को खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। और बेटा क्या कह रहा है, बस माँ कल होने तो दे और चले जाते। तो सुबह को उनकी समाधि टूटती है तब उनको ख्याल आता है कि माँ ने कहा था घर में खाने को कुछ घर पर वापस आए दिन में, जब आते माँ से पूछा माँ कल तो कह रही थी घर में खाने को कुछ नहीं, तो माँ कहती है मंगत खेत से साग तोड़ लाई थी और पड़ोस से छाछ मांग ली थी, उसने वो साग मैंने पका दिया। तो माँ से कहते माँ वही लो, उस साग को खाके माँ जी ने खुद कहा था एक दिन प्रेमी से कि उस साग में जो स्वाद था वो दोबारा कभी कोई स्वाद याद आया ही नहीं, किसी चीज में स्वाद आया ही नहीं। और माँ से कहते हैं प्रभु ने कितनी सुंदर चीज खाने के लिए भेजी। और एक हमारी अलग रात दिन चिंता केवल संसार की, या संसार ही सब कुछ है इसके ऊपर हमारी सोच ही कोई नहीं। एक सत्पुरुष है जो प्रभु की याद में इतना लीन है कि माँ कह रही है कभी खाने में कुछ भी नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है, वो समाधि में चला जाता है, प्रभु के साथ एक हो जाता है। अब बताइए ये विश्वास की पराकाष्ठा है जो सत्पुरुष की, और मैं रात दिन सब कुछ करके भी संसार का चिंतन ही करता रहता हूं, उसकी चिंताएं उसकी चिंताओं में ही फंसा रहता हूं, तो ये मेरे विश्वास का जो है मापदंड है कि सारा मैंने बोझ अपने ऊपर ले रखा है, ईश्वर का रोल कहूँ कि कोई मैं समझता नहीं किसी को। इतना बड़ा दोनों में डिफरेंस है, इसलिए हमारी सारी जिंदगी चिंता में बीत जाती है और सत्पुरुष की जिंदगी उस अमन शांति में बीत जाती है जो प्रभु के चरणों में। तो इसलिए कह रहे हैं कि सत्पुरुषार्थ मन में पायो अगम पुरख से प्रीत गवायो। कौन सा सत्पुरुषार्थ, तो अंतर्यामी प्रभु की याद ही तेरा सत्पुरुषार्थ। और खाली याद नहीं, अगम पुरख से प्रीत गवायो, प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक। मैं जब सिमरन करने बैठता हूँ, महामंत्र का जाप करता हूँ, तो बड़ा रूखा सा मेरा समय होता है, मेरे मन में कोई प्रीति होती नहीं। क्यों नहीं होती, क्योंकि मैं समझ रहा हूं प्रभु तो कोई और है, मंत्र कुछ और है। तो प्रभु फाइनली क्या है, ये तो जिनके अंदर नाद प्रकट हो भी चुका है या कुंडलनी प्रकट हो भी चुकी है वो भी नहीं जानते। उनको ये तो संतोष होता है कि मैं पहले मंत्र जाप करता था, अब मेरे अंदर एक दूसरी चीज, खुशी भी होती, लेकिन वो खुशी कब तक रहेगी, कब तक टिकेगी। आपके मन में आगे का संकल्प आ जाएगा, आगे क्या होता है। तो सत्पुरुष क्या कह रहे हैं, उनका उनकी भक्ति का राज क्या है, यह है कि जो भी चीज प्रभु ने आपको अपने भजन के लिए अपने सिमरन के लिए दी है अपनी कृपा से, वो प्रभु से अलग वस्तु नहीं है, वो खुद प्रभु का अवतार है। इसीलिए मंत्र को महामंत्र कहा जाता है, ये मंत्र नहीं है महामंत्र। जैसे प्राण है, आपकी श्वास चल रही है आ रही है जा रही है, तो प्राण को आप क्या कहते हैं, ये श्वास आ रही है जा रही है। देखिए इसका ये भेद उनको पता नहीं है कि ये प्राण महाप्राण से निकला है, महाप्राण से उदय हुआ है, ये महाप्राण खुद है, ये उससे हटके अलग चीज नहीं है। इस महाप्राण को महाप्राण का नाम ही कुंडली है। अब बताइए वो ईश्वर सत्ता है, वो महाप्राण ईश्वर सत्ता है, उससे ये प्राण उदय हो रहा है, मेरे शरीर का जीवन चल रहा है। मैंने तो इस प्राण का निर्माण नहीं किया, ना मेरी माँ ने इस प्राण का निर्माण किया, ये तो मुझको मिला। तो जिस समय ये सिमरन करने वाला भक्त उस मंत्र को साक्षात ईश्वर समझकर उसका सेवन करता है, तो उसके मन के अंदर ये भाव आता है कि मैं प्रभु का संग कर रहा हूं इस देह के अंदर। तो उसका जो सिमरन है वो प्रीति पूर्वक होता है, प्रेम पूर्वक होता है, उसके अंदर एक भाव होता है, अपनेपन का, ईश्वर का एक भाव होता है। तो उस भाव के कारण मन जो है उस मंत्र को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक ही कंप्लेंट करता रहता हूं, दसियों साल मुझे सिमरन करते करते रहते हैं, क्या करूं, मंत्र जाप करता हूं, संसार के संकल्प उठते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि वो तो उठेंगे, क्योंकि तेरी बुद्धि का निश्चय जो है वो दुरुस्त है, तो गुरु की बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा। गुरु कह रहा कि जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार, जो इसका प्रेम पूर्वक सिमरन करेगा उसका अपार कल्याण होगा। वह कंडीशन लगी हुई है प्रेम के, प्रेम हमेशा लाइव चीज से किया जाता है, पदार्थों से प्रेम नहीं होता। पदार्थों को हम लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं। तो जो प्रभु मुझको अंदर उपलब्ध है, उनका मैनिफेस्टेशन, उनका अवतरण या उनका जो अवतार है, उस रूप में वो मेरे अंदर उपस्थित है, खुद ही प्रकट हुए मेरे वास्ते, उनको मैं ईश्वर समझ ही नहीं रहा। तो मंत्र मेरे लिए एक लैंग्वेज है, एक कड़वी घूट है जो मैं पीता रहता हूं, मुझको होश ही नहीं है। प्रभु ने अवतार मेरे लिए लिया है, प्रभु की बात मानूंगा तब तक प्रभु आगे का मेरा रास्ता खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, मैं प्रभु की बात ही नहीं मानता। मैं अपने बुद्धि के निश्चय को देख रहा हूं, मन के संकल्प को देख रहा हूं, इसीलिए मैं इस प्रीति से वंचित रह जाता हूं और मेरा मन जो है संसार में विचरण करता है। तो कह रहे हैं कि उठ साजन बहु देश विचार, जाने बसया आप निरंतर। इसलिए कहते हैं कि ऐ साजन, ऐ प्रेमी, तू उस देश का विचार कर जहां प्रभु बसते हैं, खुद निवास करते हैं। वो देश कहाँ है? वो देश सातवें आसमान के ऊपर नहीं है, वो देश मेरा जो आसमान है, मेरा जो कपाल है, ये यही वो देश है जहां प्रभु निवास करते हैं, मेरी इस देह के अंदर ही निवास करते हैं, और जहां उनसे मेरा पूर्ण मिलन होता है, जिसके बाद पुनर्जन्म नहीं होता। तो उस देश का विचार करने के लिए क्या वाणी कह रही है और करना क्या है? उठ साजन ये जीवन विचार, पल पल साचा नाम चितार। चितार शब्द क्यों आता है? कि चित्त से बना है चितार, अर्थात मेरी जो चेतना है वो नाम के साथ एक रहनी चाहिए। सिमरन के बाद वो साचा नाम है। साचा नाम क्यों है? कि वो लाइव गॉड है, इसलिए इसको साचा नाम कहते हैं। वो भाषा नहीं है, वो लैंग्वेज नहीं है, लिखने में तो लैंग्वेज होती है, लेकिन सिमरन के लिए वो लैंग्वेज नहीं है, वो लाइव गॉड है, वो खुद चेतन परमेश्वर। उस प्रेम से जब मैं अपने इस जीवन में, इस काल के अंदर उस प्रभु का सिमरन करता हूं, तब जाकर वो प्रेम प्रभु का सिमरन मुझको अंतर्यामी ईश्वर के उस रूप के दर्शन कराता है, वो रूप जिसको यहां वाणी नाद करते हैं, जिसको महाप्राण कहते हैं। तो वो नाद, वो महाप्राण जिसको दसवें द्वार तक ले जाता है, जहां प्रभु विराजमान है, हमेशा से विराजमान है, लेकिन मैं अपनी कल्पना के कारण उनसे दूर हूं, मेरी कल्पना समाप्त होती है, प्रभु के साथ मैं एक होता हूं, तब जाके मेरा मोक्ष होता है, अर्थात उन्होंने जब मुझको इस प्रकार करके झंझट में मुझको फिर प्रसन्न नहीं पाऊंगा। ओम नमः शिवाय।